16 दिसंबर 1971 समय गही कोई शाम के 5:30 बजे पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद जनरल सगत सिंह पूर्वी कमान के प्रमुख जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को ढाका हवाई अड्डे छोड़ने गए। जल्दी जल्दी जनरल जैकब से उन्होंने मंत्रणा की। जनरल अरोड़ा ने उन्हें नियाजी के दस्तखत की हुई आत्मसमर्पण के दस्तावेज की प्रतिलिपि देकर कहा कि वो इसे नियाजी तक पहुंचा दें। जैसे ही जनरल अरोड़ा का हेलीकॉप्टर ढलते हुए सूरज की कम होती हुई रोशनी में गुम हुआ, जनरल सगत सिंह ने अचानक ढाका हवाई अड्डे पर अपने आप को बिल्कुल अकेले खड़ा पाया। उनके साथ सिर्फ उनके स्टाफ ऑफिसर्स और कुछ वायरलेस ऑपरेटर्स थे। 16 दिसंबर का दिन जनरल सगत सिंह के लिए बहुत उथल पुथल वाला था। उनके एडीसी रहे और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने जनरल रणधीर सिंह याद करते हैं।
हम सवेरे सवेरे उठे और डॉन होते ही हेलीकॉप्टर लिया, जनरल साहब ने मेघना को क्रॉस करा और नरसिंगी गांव है वहाँ उतरे, वहाँ से हमने गाड़ी ली और जनरल साहब एकदम आगे गए जहाँ पर फोर गार्ड्स का ऑपरेशन चल रहा था देखने के लिए। वहाँ उनको खबर मिली कि एकदम वापस आओ, आपको अगरतला बुलाया है। जैसे ही वो कोमिला पहुंचे जहाँ हमारा हेडक्वार्टर्स था, वहाँ उनके स्टाफ ने बताया कि ढाका में वो सरेंडर होने वाला है और आपको बुलाया गया है वहाँ पे। थोड़ी देर के बाद एक हवाई जहाज आया जिसमें जनरल अरोड़ा, उनके वाइफ, ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयर मार्शल दीवान और फ्लैग ऑफिसर ईस्टर्न नेवल कमांड एडमिरल कृष्णन, ये और काफी सारे स्टाफ ऑफिसर सब पहुंच गए। हमको वेट करना पड़ा करीब 1.5 घंटा। जब ऑल क्लियर आया तो हमने ये बड़े एयरक्राफ्ट को छोड़ा और 10 हेलीकॉप्टर में सबको बैठाया और हम ढाका जाकर हमने लैंड करा। ऐसा क्योस था उधर के मालूम नहीं पड़ रहा था क्या करें, क्योंकि पूरा के पूरा शहर भर आ गया।
जब जनरल सगत सिंह के हेलीकॉप्टर ने ढाका में लैंड किया, उस समय पूरा ढाका शहर सड़कों पर उतर आया था।
हमारे सैनिक खड़े थे रोड पे, उनको मालूम नहीं करें क्या, कैसे कंट्रोल कर। लड़कियां आकर उनको हग कर रही हैं, उनके हथियारों के अंदर फूल डाल रही हैं, उन्होंने अपने घर पूरे खोल दिए थे हमारे जवानों के लिए, अपने हमारे ऑफिसर्स के लिए। इतने खुश थे, हमारे सिपाहियों ने एक एरिया क्लियर कर रखा था, एक टेबल और 2 कुर्सियां लगा दी थी। और सुरजीत सेन जो थे ऑल इंडिया रेडियो के जो रिपोर्टर, वो उन्होंने सबसे बेस्ट जगह ले ली, वो टेबल के नीचे बैठ गया के माइक्रोफोन ले, और बाकी प्रेस फोटोग्राफर्स अपनी अपनी जगह ढूंढने लगे। फिर जनरल अरोड़ा और जनरल नियाजी आकर बैठे। फिर जनरल अरोड़ा ने वो सरेंडर डॉक्यूमेंट निकाला और उनको बोला आप साइन करें। उनके पास पेन नहीं थी नियाजी साहब के पास, तो फिर सुरजीत सेन ने अपनी पेन दी उनको, फिर उन्होंने साइन करा। 5 कॉपी साइन की गई। फिर जनरल अरोड़ा ने बोला आप अपना हथियार दें। फिर जनरल नियाजी साहब ने अपना हथियार निकाला, वो पकड़ाया और फिर अरोड़ा साहब ने तो बोला मैं तो जा रहा हूँ वापस। इतने में क्या हुआ कि नियाजी के मारने के लिए लोग इतने वो थे क्योंकि पत्थर वत्थर आने लगे, तो हम लोग जितने भी यंगस्टर्स थे और स्टाफ जो था हमने पूरा उनको घेर लिया था चारों तरफ से। तो मेरे को भी 1-2 पत्थर लगे थे, उनको याद है। बड़े मुश्किल से उनको कार के अंदर हमने डाला, उनकी प्रोटेक्शन के साथ हमने उनको कैंटोनमेंट भेजा।
जनरल सगत सिंह के सैनिक जीवन का पहला बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्हें 1961 में ब्रिगेडियर का प्रमोशन दे आगरा स्थित 50 पैराशूट ब्रिगेड का कमांडर बनाया गया, और वो भी तब जबकि वो पैराट्रूपर नहीं थे। जनरल सगत सिंह की जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल वी के सिंह बताते हैं।
उनको पैरा ब्रिगेड की कमांड दी गई जब उनकी उम्र 41 साल हो गई थी, और पैरा ब्रिगेड की कमांड पैरा ट्रूपर ही को दी जाती है, किसी नॉर्मल इन्फेंट्री ऑफिसर को नहीं दी जाती है। पहली बार हुआ कि उनको पैरा ब्रिगेड की कमांड दी गई और उनको ब्रिगेडियर की रैंक में जाकर के पूरा पैरा की ट्रेनिंग प्रोबेशन करना पड़ा, और जब आप वो कर लेते हैं तभी आपको विंग्स मिलती हैं जिससे कि पैरा ट्रूपर पहचाना जाता है। और सगत ये जानते थे कि मैं जब तक विंग्स नहीं पा लूँगा, मेरे को कमांड तो मिल गई है बट जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी जब तक मैं खुद पैरा ट्रूपर नहीं बनूँ। और उन्होंने एक एक दिन में 2-2 जंप्स किए कि जल्दी से जल्दी उनका ट्रेनिंग पूरी हो जाए और विंग्स मिल गए।
1960 के गोवा ऑपरेशन में जनरल सगत सिंह की 50 पैरा को एक सपोर्टिव रोल के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने उन्हें दी गई जिम्मेदारी से कहीं बढ़कर काम किया और गोवा को इतनी तेजी से आजाद कराया कि सभी दंग रह गए।
ये डिसाइड हुआ कि 17 डिवीजन जो है वो पूरब की तरफ से गोवा पर हमला करेगी और 50 पैरा ब्रिगेड जो सगत कमांड कर रहे थे ये उत्तर की तरफ से आएगी। इनका रोल एक्चुअली सपोर्ट करना था 17 डिवीजन को। जो टास्क दिया गया था 17 डिवीजन को कि जाके पणजी पहुंच के पहले कैप्चर करें, वो सगत सिंह का रेट ऑफ एडवांस देख करके 18 दिसंबर को ऑपरेशन शुरू हुआ और 19 तारीख को मॉर्निंग में ही वो उनकी बटालियन बिल्कुल पंजिम के पास पहुंच गई थी। वहाँ सगत ने खुद ही इनको रोका नदी के इस पार की, अभी रात हो गई है, पणजी बिल्टअप पॉपुलेटेड एरिया है, हम नहीं चाहते वहाँ रात को ऑपरेशन हो, कैजुअलिटीज होंगी, रुक जाओ सुबह क्रॉस करेंगे नदी। सुबह उन्होंने क्रॉस करी नदी। गोवा की सरकार ने पुल वुल तोड़ दिए थे, इन लोगों ने एक तरह के सोचे तैर के क्रॉस किया और लोकल वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उनका इतना सपोर्ट था, उन लोगों ने हर तरह की इनको मदद की। आप समझ लीजिए 36 घंटे में 2 बटालियन इनकी पहुँच गई पणजी एक साथ और ये कैप्चर हो गया।
जून 1962 आते आते 50 पैरा गोवा का अपना ऑपरेशन पूरा कर आगरा वापस आ गई। तभी आगरा के मशहूर क्लार्क शिराज होटल में जनरल सगत सिंह के साथ एक दिलचस्प घटना घटी।
जनरल सगत वहाँ गए थे, सिविल ड्रेस में थे, कुछ अमेरिकन टूरिस्ट उसी रेस्टोरेंट में थे, वो बहुत गौर से इनको देख रहे थे। जनरल सगत को लगा भाई ये क्यों मुझे देख रहे हैं, तो कुछ देर के बाद एक उनमें से उठ के आया, उन्होंने कहा आप ब्रिगेडियर सगत सिंह हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो इन्होंने बोला भी आप क्यों पूछ रहे हो, तो उसने बोला हम अभी अभी पुर्तगाल से आ रहे हैं और वहाँ कई जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं आपके, आपका चेहरा है उसमें है और जो इनको पकड़ के लाएगा उसको हम $10,000 का इनाम देंगे। तो जनरल सगत ने कहा ठीक है आप कहिए तो मैं चलता हूँ आपके साथ, आपको मिलेगा इनाम। उन्होंने कहा नहीं अभी हम पुर्तगाल वापस नहीं जा रहे।
इसके बाद जनरल सगत सिंह को 17 माउंटेन डिवीजन का GOC बनाया गया। इसी पोस्टिंग के दौरान नाथुला में चीनी सैनिकों की भारतीय सैनिकों से जबरदस्त भिड़ंत हुई और 1962 के बाद पहली बार जनरल सगत सिंह ने दिखाया कि चीनियों के साथ न सिर्फ बराबरी की टक्कर ली जा सकती है बल्कि उन पर भारी भी पड़ा जा सकता है।
इत्तेफाक से मैं उस समय वहीं पोस्टेड था सिक्किम में ही, 67 में जनरल अरोड़ा थे, कोर कमांडर थे, उनसे बात की कि भाई हमारा बॉर्डर की मार्किंग होनी चाहिए। सगत ने बोला ऐसा है मैं क्रेस्ट लाइन जो है मैं उस पर चलता हूँ, चाइनीज ऑब्जेक्ट नहीं करते तो हम ये मान लें कि यही बॉर्डर है और वहीं पर फेंसिंग बना देंगे एक। तो उन्होंने वही किया, जब फेंसिंग स्टार्ट करी तब चाइनीज ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप कैसे बना सकते हैं इसे, भाई ये तो हम बॉर्डर ही बना रहे हैं आपके उसमें तो नहीं आ रहे हैं। और ये फेंसिंग का काम चल रहा था, चाइनीज के ट्रुप्स आ गए, कॉन्फ्रंट्रेशन हो गए, टूतू में होने लगी और जो ग्रेनेडियर्स की बटालियन थी वहाँ पे सेकेंड ग्रेड उसके CO थे कर्नल राय सिंह, वो बंकर में, सगत ने बोला था भाई तुम लोग बाहर मत आना, जो बॉर्डर ट्रुप्स हैं उन्हीं को डील करने दो। बट वो अपना जोश में बाहर आ गए, चाइनीज कमांडर के साथ बात कर रहे थे, इतने में चाइनीज ने फायर खोल दिया, इनको गोली लग गई, ये गिर गए, गुस्से में उन्होंने अपने ट्रेंचेस से निकल के अटैक कर दिया, बहुत लोग मारे गए, गोलीबारी होती रही। तो जनरल सगत ने फिर क्या किया कि ऐसा नहीं चलेगा, मीडियम आर्टिलरी रिक्विजिशन की, नीचे से आई ऊपर, उससे फिर उन्होंने फायरिंग शुरू की, मीडियम गन्स की फायरिंग थी, उससे चाइनीज कैजुअलिटी बहुत हुई, जबकि उनके गोले जो हमारे यहाँ गिरते थे वो एट रैंडम फायर करते थे, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कहाँ मार रहे हैं। तो उसके बाद फिर जब सीज फायर हुआ तो चाइनीज ने कहा कि भाई आप लोगों ने अटैक किया है, और एक तरह से उनकी बात सही थी, हमारी सारी बॉडीज चाइना में पाई गई क्योंकि हमने हमला किया था, चाइनीज तो हमारी तरफ कोई आया नहीं था। उन्होंने बोला आपके पास हमारी एक भी बॉडी है? तो नहीं है, तो फिर किसने हमला किया? आपने किया। तो लोग बहुत नाखुश हुए, सुपीरियर्स जो थे कि भाई आपने ये खाम खां की लड़ाई कर दी और कोई हमारी 200 कैजुअल्टीज हो गई हैं, करीब 65 लोग तो मारे गए, जान गए, 145 के कभी इंजर्ड थे, चाइना की करीब 300 कैजुअल्टीज हुई थी। बट एक खास बात नोट करने की है कि 62 वॉर के बाद पूरी इंडियन आर्मी में जो एक तरह से चाइनीज की दहशत हो गई थी कि ये चाइनीज तो सुपरमैन है, हम इनके मुकाबले कुछ नहीं कर सकते, वो जो थी वो टूट गई। हिंदुस्तान का जवान था उसको पता लग गया कि हम भी चाइनीज को मार सकते हैं और मारा। तभी तो कहते हैं ये पहली बार था कि वी गेव द चाइनीज अ ब्लडी नोज।
जनरल सगत सिंह के मिलिट्री करियर का स्वर्णिम क्षण तब आया जब उन्हें नवंबर 1970 में 4 कोर की कमान दी गई। इस कमान ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई।
अगरतला आकर उन्होंने देखा कि ये तो ऐसा स्टेट है जहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। ब्रॉड गेज लाइन थी वो 1400 किलोमीटर दूर थी, जो मीटर गेज लाइन थी वो एक सिंगल लाइन थी जो करीब 240 किलोमीटर की लाइन थी और उसमें मैक्सिमम एक टाइम पे 10 ट्रेन ही गुजरती थी। ये हालात देख के उनको एकदम महसूस हो गया कि ये बिल्डअप जो है अगर कभी कुछ नहीं करा तो असंभव हो जाएगा। तो उन्होंने उसके बाद लोगों को काफी चाबी लगाई, इंजीनियर्स को काफी तादाद में मूव करा गया और काम शुरू हुआ। पर याद रखें साहब के जब ये काम शुरू हुआ मानसून हमारे ऊपर आ गए थे और उस साल बहुत ही जबरदस्त मानसून आए थे, सितंबर तक बारिश जबरदस्त गिरी। पर हमारी किस्मत इसलिए अच्छी रही कि मार्च से पाकिस्तान की सेना थी उन्होंने अत्याचार शुरू कर दिया था उनके लोगों के खिलाफ, जिससे कि बहुत सारे रेफ्यूजीज जो थे वो अगरतला में या त्रिपुरा में आ गए थे। तो इन रेफ्यूजीज की मदद से इंजीनियर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा। याद रखे साहब के 1,00,000 सैनिकों को आना था, तकरीबन 30,000 टन सामान आना था, 5,000 गाड़ियों को आना था, करीब 400-500 खच्चर आने थे, उनका पूरा लॉजिस्टिक सेटअप क्रिएट होना था। रोड जो था वो एक सिंगल लेन रोड था जिसके ब्रिजेस इतने कमजोर थे कि मीडियम गन भी मूव नहीं कर सकती।
युद्ध के दौरान जनरल सगत सिंह को फ्लाइंग जनरल का निकनेम दिया गया। वो सुबह होते ही हेलीकॉप्टर पर सवार होकर निकल पड़ते और ऊपर से ही मुआयना करते कि लड़ाई किस तरह लड़ी जा रही है। उनके एडीसी रहे लेफ्टिनेंट जनरल रणधीर सिंह याद करते हैं।
जनरल साहब करीब 6 बजे उठ के हेलीकॉप्टर में जाते थे। अगरतला हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम जो था उन्होंने एक बास्केट दे रखी थी उनको, पिकनिक बास्केट। उस पिकनिक बास्केट के अंदर मैं कोल्ड कॉफी और सैंडविचेस डलवा के वो हेलीकॉप्टर में रखते रहा, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर पायलट्स के लिए भी हमको खाना ले जाना पड़ता। फिर वो हेलीकॉप्टर लेके हम करीब 6:30-7 बजे जैसे ही धूप निकलती थी हम निकल पड़ते। फिर पूरा दिन जनरल साहब पूरी बैटल फील्ड पे घूमते थे, मतलब उत्तर तरफ सिलट की तरफ जाना, फिर अगरतला की तरफ आना, फिर दक्षिण चित्तगांव के एरिया तक जाना। कई टाइम पर क्या होता था कि वो जहाँ लड़ाई हो रही थी वहीं लैंड करते और शाम जब अंधेरा होने लगता था तब हेलीकॉप्टर वापस लैंड करता था। जनरल साहब 1 घंटा लेते थे अपने आप को तैयार करने के लिए, फिर ऑपरेशन रूम में जाते थे। ऑपरेशन रूम में पूरी उन्होंने डिसाइड करते थे कि उस दिन का क्या क्या हुआ है, क्या हो सकता है। फिर 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो को सुनने के लिए, उस टाइम ऑल इंडिया रेडियो का जो इन्फॉर्मेशन आता बिल्कुल ही करेक्ट आता था, तो वो सुनने के लिए हम ऑफिसर्स मेस में आते थे, रेडियो को ऑन करते थे, कभी GBC कभी ऑल इंडिया रेडियो को सुनना। उसी टाइम जनरल साहब करीब 10 बजे करीब हुक्म पास करते थे मेरे को कि कल का प्रोग्राम ये है, आप सबको इन्फॉर्म करो। जनरल साहब डिनर खा के करीब 12 बजे हट में जाकर सो जाते थे।
इसी तरह के एक हेलीकॉप्टर मुआयने के दौरान जनरल सगत के हेलीकॉप्टर पर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलियां चलाई। हेलीकॉप्टर चला रहा पायलट बुरी तरह से घायल हो गया और जनरल सगत सिंह बाल बाल बचे।
जनरल साहब देखना चाह रहे थे कि कहां कहां लैंडिंग होनी चाहिए। नदी के साथ साथ हम जा रहे थे देखने के लिए दुश्मन कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब ये हरकत कर रहे थे तो वहां एक पुल है, एक ही पुल है एक्चुअली मेघना के अक्रॉस, उसको बोलते हैं आशुगंज ब्रिज। उस ब्रिज के दुश्मन की साइड की तरफ ग्रेन के साइलोस थे, बड़े बड़े साइलोस, वो साइलो एक्सप्लोड कर गया। तो जनरल साहब ने एकदम नोटिस करा तो उन्होंने बोला कोई गड़बड़ी, उन्होंने हेलीकॉप्टर वाले को बोला चलो देखने चलो। जैसे ही हम ब्रिज के ऊपर पहुंचने लगे वो साइलो के पास, तो उनके एक मीडियम मशीन गन थी उसने फायर किया, जिससे कि पायलट घायल हो गया। मेरे जैसे लोग जो पीछे बैठे थे वो पूरा खून और उसके पूरे मांस वास हमको आकर गिरी। जनरल साहब के फोरहेड के ऊपर एक ग्रेज हुआ, पर उनका जो को पायलट था उसने कंट्रोल ले लिया और हेलीकॉप्टर को गाइड करके हम अगरतला पहुंच गए। जब सबको इवैक्यूएट का गिना तो 64 बुलेट होल्स थे हेलीकॉप्टर। जनरल साहब ने पॉज नहीं करा, एक और हेलीकॉप्टर लिया और फिर निकल पड़े।
जनरल सगत सिंह को सबसे अधिक वाहवाही तब मिली जब उन्होंने 4 किलोमीटर चौड़ी मेघना नदी को हेलीकॉप्टरों की मदद से एयर ब्रिज बनाकर पार किया। बांग्लादेश युद्ध में जनरल सगत सिंह की कमांड में काम कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल ओपी कौशिक बताते हैं।
उन दोनों हमारे पास जो हेलीकॉप्टर थे वो MI-4 हेलीकॉप्टर थे। MI-4 हेलीकॉप्टर में नाइट लैंडिंग की काबिलियत नहीं थी उन दोनों, और रात को तो लैंड कर ही नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स मेघना रिवर पार करने के लिए उन्होंने कहा नहीं लाइटेड हेलीपैड बनाइए, और हमने आप अचंबा करोगे जो मिल्क टेन आते थे हमारे, खाली मिल्क टेन में केरोसिन ऑयल जला करके हेलीपैड बनाए और उन हेलीपैड्स के अंदर MI-4 हेलीकॉप्टर से 6-6, 8-8 की कैपेसिटी के, MI-4 की टोटल कैपेसिटी 8 आदमियों की होती थी, वो लगातार उन्होंने हेलीकॉप्टर से ट्रूप्स किए। और ये उनकी ही खासियत थी कि एयरफोर्स वाले हर बात मानते थे चाहे उसमें कुछ जोखिम हो या ना हो, लेकिन सगत सिंह ने एक बार बात बता दी वो एयरफोर्स वाले भी उस बात को मान जाते थे। तो लगातार एयर ब्रिज बोटों से पार करना, दूसरे तरीकों से पार करना और हेलीकॉप्टर से जितने ट्रुप जा सकते इन्होंने पार करवा के छोड़ा उधर।
दिलचस्प बात यह है कि पूर्वी कमान के प्रमुख जनरल जग्गी अरोड़ा ने उन्हें मेघना नदी न पार करने के निर्देश दिए थे। जब वो मेघना नदी पार कर चुके तो उनके पास जनरल अरोड़ा का फोन आया और दोनों के बीच जबरदस्त कहा सुनी हुई। जनरल कौशिक उस समय जनरल सगत सिंह की बगल में बैठे हुए थे।
उस टाइम कलकत्ता से आर्मी कमांडर का टेलीफोन आया कि भाई आपने मेघना रिवर क्यों क्रॉस कर दिया है। जनरल सगत सिंह ने जनरल अरोड़ा को कहा आपने जो मुझे टास्क दिया था उससे मैंने आपको एम प्लस दे दिया है। कहता नहीं, आपको मैंने टास्क दिया था मेघना रिवर पार नहीं की जाएगी, आपने क्यों पार कर। उनका देखिए मैं एक फील्ड कमांडर हूँ, कोर कमांडर हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है कि अगर सिचुएशन फेवरेबल है तो मैं उसको एक्सप्लॉइट करूँ। मुझे मौका मिला, मैंने मेघना ही नहीं पार कर दी, मेरे ट्रुप्स तो ढाका के आउटस्कर्ट्स पे पहुंच चुके हैं। जनरल अरोड़ा ने ऑर्डर दिए नहीं आप अपने ट्रुप्स को वापस बुलाइए। जनरल सगत सिंह ने कहा देखिए ये पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा। अंत में जनरल सगत सिंह ने कहा कोई ट्रुप्स मेरे वापस नहीं बुलाऊंगा, आप दिल्ली को रेफर करेंगे मामला। तो उन्होंने बड़े गुस्से में फिर टेलीफोन बंद करके कहा कि ये चाह रहे हैं कि मैं वापस करूं ओवर माय डेड बॉडी।
मेघना नदी पार करने की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची साउथ ब्लॉक में, इंदिरा गांधी इसे सुनकर खुशी से उछल पड़ी। बाद में उस समय के रक्षा सचिव बीबी लाल ने बताया
उस टाइम हमारी मीटिंग हो रही थी साउथ ब्लॉक में, कुछ देर में खबर आई कि मेघना क्रॉस कर दिया सगत ने। जगजीवन राम भागे भागे आए, रक्षा मंत्री थे, और ये खबर जब इंदिरा गांधी के पास पहुंची तो इन्होंने देखा इंदिरा गांधी कॉरिडोर में भागती हुई आई और उनका बाल और साड़ी के उड़ रहे थे। पहली बार उन्होंने देखा उनको, इतनी खुशी उनके चेहरे पे। उनको तब ये हुआ कि हम जीत गए लड़ाई। और ये पहली बार हुआ है एक एयरब्रिज बनाया गया हवाई रास्ते से, पूरा का पूरा ब्रिगेड जो है उन्होंने इतनी बड़ी नदी को क्रॉस किया।
इतना सब कुछ करने के बाद भी जनरल सगत सिंह को कोई वीरता पुरस्कार नहीं दिया गया। उन्हें सिर्फ भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण ही मिला, और तो और उनका प्रमोशन भी नहीं हुआ।
ये तो बड़ी अब दुख की बात है, जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था 71 वॉर में उसको गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला। बाकी तमाम लोगों को महावीर चक्रा और भी चक्रा, मतलब ब्रिगेड कमांडर्स, डिविजनल कमांडर्स, इतने लोगों को दिया गया, इनको नहीं दिया गया। और दूसरा उनको प्रमोशन भी नहीं मिला, कम से कम को कमांडर थे। अब चीफ तो उस समय कोई नहीं कह सकता कौन बनेगा, बट आर्मी कमांडर बन ही सकते थे। देखिए इनके इमीडिएट सुपीरियर थे, उनसे अक्सर उनकी नोकझोंक होती रहती थी। पहली बार तो 65 में जो मैं बताया नथुला में कि उनको बोला गया जनरल बबूर ने खाली करो, नहीं खाली किया, बबूर साहब बहुत नाखुश हुए। उसके बाद 67 में जब एक्चुअल लड़ाई हो गई उस टाइम जग्गी अरोड़ा कोर कमांडर थे, वो भी बहुत नाखुश हुए।
रिटायर होने के बाद जनरल सगत सिंह ने अपना जीवन जयपुर में बताया। इस तरह का व्यक्तित्व था जनरल सगत सिंह का। ये जानने के लिए हमने बात की उनकी पोती मेघना सगत सिंह से।
मेरे दादाजी एक ऐसे इंसान है जिनको आप क्राउड में मिस कर ही नहीं सकते। 6 foot 3 inches, इतनी हेवी वॉइस, ऐसी स्ट्राइकिंग पर्सनालिटी एंड सो हम्बल, वेरी अप्रोचेबल, उनसे कोई भी बात कर सकता था। हम लोग मोस्टली हॉस्टल में रहते थे और छुट्टियों में घर आते थे, तो जिस दिन आते उस दिन दादाजी यू नो फार्म पे चीकू वीकू आम ये सब लगे रहते थे, तो वो ठंडा करके प्लेट में भर के नाइफ रख के हमारे लिए वेट कर रहे होते थे कि बच्चे आएंगे और मैं उनको फल खिलाऊंगा अपने हाथों से काट के। और उनको डाइनिंग टेबल पे मैनर्स का खूब होता था, ढंग से खाओ, रोटी चूर के मत खाओ, पर ये एक चीज होती थी जो वो खुद हमें खिलाते थे, फ्रूट। सुबह सुबह मतलब मुझे गार्डनिंग का शौक चला एक बार, तो मैंने दादा को बोला आई वांट सीड्स चाहिए। फिर हम लोग लेके आए, फिर उन्होंने बोला ये राजस्थान की मिट्टी है, इसमें नहीं उगते ऐसे वाले फ्लावर्स। आई सेड आई स्टिल वांट टू ट्राई इट एंड यू विल नॉट बिलीव, आफ्टर 25 डेज जब उसमें फर्स्ट फ्लावर निकला तो दादाजी वॉज इन माई रूम एट 6:30 इन द मॉर्निंग, ही सेड तेरी मेहनत का फूल दिखाना है। And he took me to the kiyari and there was only one pansy blooming and he said your hard work is paying. जब हम लोग हॉस्टल से पहली बार यहाँ जयपुर आए थे तो पिज्जा हट खुला था एंड वी डिडंट नो मेनी लोकल पीपल हियर, क्योंकि हमेशा से सोफिया अजमेर में इधर उधर हॉस्टल में रहे, So Dadaji was the one who took us to Pizza Hut. He said, I'll show you the change in Jaipur.
General Sagat Singh ko Bharat ka sabse nirbheek general mana jata hai. उन्होंने न सिर्फ कई ऑपरेशनों में जीत हासिल की बल्कि उस सबसे कहीं ज्यादा काम किया जितना उनसे करने के लिए कहा गया था। भारतीय सेना में उनको वही स्थान हासिल है जो अमरीकी सेना में जनरल पैटन और जर्मन सेना में रोमेल को हासिल था। उनके साथ काम कर चुके जनरल ओपी कौशिक कहते हैं,
देखिए मेरे विचार से हमने 62 की युद्ध में भी हिस्सा लिया, तब भी मैं कैप्टन था, 65 में हिस्सा लिया, 73 में हिस्सा लिया, बाकी तो मैं सियाचिन ग्लेशियर का जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहा हूँ, कश्मीर घाटी में भी जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहा हूँ। इतने सालों से हमने पूरी सेना को और सारे युद्धों को देखा है। मेरे विचार से इंडियन आर्मी का बेस्ट फील्ड कमांडर जनरल सगत सिंह हुआ है। वो डिस्ट्रीब्यूशन करने में बड़े तेज थे, मतलब जिम्मेवारी देने में लोगों को, डिसेंट्रलाइज करते थे काम और पूरा भरोसा देते थे और उनको पूरी अपने पूरी कोऑपरेशन देते थे, जो सीनियर ऑफिसर इंस्पायर करते थे कि अपना तुम काम करो, उनमें बड़ी जबरदस्त एक भावना थी मोटिवेट करने की। तीसरी बात जो बड़ी भाती है मुझे, अगर कोई गलती हो जाती थी वो आमतौर पे जूनियर ऑफिसर्स को जिम्मेवार नहीं ठहराते थे बल्कि करेक्टिव मेजर लेते थे, उनका साहस बढ़ाते थे, अगर कोई गलती भी हुई है वो अपने ऊपर ले लेते थे।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।